एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
उठा कर गोद में स्वर्ग का मार्ग के दिन वहाँ यीशु के पीछे सदा मैं चलूंगी। हाँ मैं उसके हाथों को मैं जीवन भर यूं ही चलूंगी। यीशु के पीछे सदा मैं चलूंगी। हाँ मैं उसके हाथों को मैं जीवन भर यूं ही चलूंगी।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम सबों को तू स्वीकार कर पिता, हमारे मनों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने के लिए हमें मदद कर। तेरा पवित्र आत्मा का आशीष दे, विशेषकर मेरे संगो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के सामर्थ के द्वारा तेरी इच्छा के अनुसार बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है एक बड़ी खाड़ी खड़ी की गई भाग दो। प्यारो, हम अध्ययन कर रहे हैं लूका 16 का 19 से 31 पर जो दृष्टांत दी गई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। इसमें हमने देखा कि मसीह दिखाते हैं कि इस जीवन में मनुष्य अपने अनंत भाग्य का निर्णय करते हैं। मनुष्य अपने अनंत भाग्य का निर्णय इसी जीवन में करते हैं। यह दृष्टांत है और अब्राहम और एक बार अमीर रहे व्यक्ति के बीच की बातचीत प्रतीकात्मक है। वह धनी व्यक्ति जिसके पास बहुत से विशेष अधिकार थे, उसे हमारे सामने ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे अपने उपहारों को विकसित करना चाहिए था ताकि उसके कार्य महान परे तक पहुंचे और उनके साथ बेहतर आध्यात्मिक लाभ भी हो। छुटकारे का उद्देश्य न केवल पाप को मिटाना है बल्कि मनुष्य को उन आध्यात्मिक उपहारों को वापस देना है जो पाप की बौनी शक्ति के कारण खो गए हैं। धन को अगले जीवन में नहीं ले जाया जा सकता, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मसीह के लिए आत्माओं को जीतने में किए गए अच्छे कर्म स्वर्गीय न्यायालयों में ले जाए जाते हैं। लेकिन जो लोग स्वार्थी रूप से प्रभु के उपहारों को अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने जरूरतमंद साथी प्राणियों को बिना सहायता के छोड़ देते हैं और दुनिया में परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, वे अपने निर्माता का अपमान करते हैं। स्वर्ग की पुस्तकों में उनके नामों के सामने परमेश्वर की लूट लिखी गई है। धनी व्यक्ति के पास वह सब कुछ था जो धन से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन उसके पास वह धन नहीं था जिससे वह परमेश्वर के साथ अपना हिसाब किताब सही रख पाता। वह ऐसे जीता था मानो उसके पास जो कुछ भी था वह उसका अपना था। उसने परमेश्वर के आह्वान और पीड़ित गरीबों के दावों की उपेक्षा की थी, लेकिन अंतत एक ऐसा आह्वान आता है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता, एक ऐसी शक्ति द्वारा जिस पर वह सवाल नहीं उठा सकता या जिसका विरोध नहीं कर सकता। उसे उस परिसर को छोड़ने का आदेश दिया जाता है जिसका वह अब प्रबंधक नहीं है। एक बार का धनी व्यक्ति निराशाजनक गरीबों में सिमट जाता है। स्वर्ग के करघे में बुनी गई मसीह की धार्मिकता की पोशाक उसे कभी नहीं ढक सकती। वह जो एक बार सबसे कीमती बैंगनी बेहतरीन लिनन पहनता था वह नग्नता में सिमट गया है। उसकी परिवेक्षा समाप्त हो गई है। वह दुनिया में कुछ भी नहीं लाया और वह इसे कुछ भी नहीं ले जा सकता। मसीह ने पर्दा उठाया और पुजारियों और शासकों, शास्त्रियों और फरीसियों के सामने यह तस्वीर पेश की, इसे देखो, तुम जो इस दुनिया की चीजों में अमीर हो और परमेश्वर के प्रति अमीर नहीं हो, क्या तुम इस दृश्य पर विचार नहीं करोगे? जो मनुष्यों के बीच अत्यधिक सम्मानित हैं वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। मसीह पूछता है, यदि मनुष्य सारी दुनिया को प्राप्त करे और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा। हम यह पढ़ते हैं मरकुस 8 का 36 और 37 में। प्यारो, जब मसीह ने धनवान व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत दिया तो यहूदी राष्ट्र में बहुत से लोग धनवान व्यक्ति की दयनीय स्थिति में थे, जो प्रभु के धन का उपयोग स्वार्थी संतुष्टि के लिए कर रहे थे और खुद को यह वाक्य सुनने के लिए तैयार कर रहे थे। तो तराजू में तौला गया और तो घटिया पाया गया। दानियल 5:27। धनवान व्यक्ति को हर सांसारिक और आध्यात्मिक आशीर्वाद का अनुग्रह प्राप्त था, लेकिन उसने इन आशीर्वादों के उपयोग में परमेश्वर के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। यहूदी राष्ट्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रभु ने यहूदियों को पवित्र सत्य का भंडार बनाया था, उसने उन्हें अपने अनुग्रह के भंडारी नियुक्त किया था, उसने उन्हें हर आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ दिया था और उसने उन्हें ये आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। उन्हें अपने भाइयों के साथ व्यवहार करने के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए थे, जो पतन की ओर गिर गए थे, जो उनके द्वार के भीतर अजनबी थे और उनके साथ जो उनके बीच गरीब थे। उन्हें अपने फायदे के लिए सब कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करनी थी, बल्कि जरूरतमंदों को याद रखना था और उनके साथ साझा करना था। और ईश्वर ने उनके प्रेम और दया के कार्यों के अनुसार उन्हें आशीर्वाद देने का वादा किया, लेकिन अमीर आदमी की तरह उन्होंने पीड़ित मानवता की सांसारिक या आध्यात्मिक आवश्यकताओं को दूर करने के लिए कोई मदद नहीं की। घमंड से भरे हुए उन्होंने खुद को परमेश्वर के चुने हुए और पसंदीदा लोग माना, फिर भी उन्होंने ईश्वर की सेवा या पूजा नहीं की। उन्होंने अपनी निर्भरता इस तथ्य पर रखी कि वे अब्राहम के संतान थे। हम अब्राहम के वंश हैं, उन्होंने गर्व से कहा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:33 में, जब संकट आया तो यह प्रकट हुआ कि उन्होंने खुद को ईश्वर से अलग कर लिया था और अब्राहम पर अपना भरोसा रखा था, मानो वह परमेश्वर हो। मसीह यहूदी लोगों के अंधेरे मन में प्रकाश चमकाना चाहते थे। उन्होंने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के काम करते, लेकिन अब तुम मुझे एक ऐसे व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह सत्य बताया है जो मैंने परमेश्वर से सुना है, मार डालना चाहते हो। यह अब्राहम ने नहीं किया। यूहन्ना 8:39-40 में पढ़ते हैं, मसीह ने वंश में किसी गुण की मान्यता नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्मिक संबंध सभी प्राकृतिक संबंधों से बढ़कर है। यहूदियों ने अब्राहम के वंशज होने का दावा किया, लेकिन अब्राहम के काम ना करके उन्होंने साबित कर दिया कि वे उसके सच्चे बच्चे नहीं थे। केवल वे ही सच्चे वंशज माने जाते हैं जो ईश्वर की आवाज का पालन करके अब्राहम के साथ आध्यात्मिक रूप से सामंजस्य स्थापित करते हैं। हालांकि भिखारी उस वर्ग से संबंधित था जिसे लोग हीन समझते थे, मसीह ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसे अब्राहम सबसे करीबी दोस्ती में ले जाएगा। धनी व्यक्ति जीवन की सभी सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था, लेकिन वह इतना अज्ञानी था कि उसने अब्राहम को वहां रखा जहां परमेश्वर को होना चाहिए था। यदि उसने अपने उच्च विशेष अधिकारों की सराहना की होती और परमेश्वर की आत्मा को अपने मन और हृदय को ढालने दिया होता तो उसकी स्थिति बिल्कुल अलग होती। यही बात उस राष्ट्र के साथ भी हुई जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। यदि उन्होंने ईश्वरीय आह्वान का उत्तर दिया होता तो उनका भविष्य पूरी तरह से अलग होता। उन्होंने सच्ची आध्यात्मिक समझ दिखाई होती, उनके पास साधन थे जिन्हें परमेश्वर ने बढ़ाया होता, जिससे वे पूरे विश्व को आशीर्वाद और प्रबुद्ध कर सकते थे, लेकिन वे प्रभु की व्यवस्था से इतने दूर हो गए थे कि उनका पूरा जीवन ही विकृत हो गया था। वे सत्य और धार्मिकता के अनुसार परमेश्वर के भंडारी के रूप में अपने उपहारों का उपयोग करने में विफल रहे। अनंत काल उनके हिसाब में नहीं लाया गया और उनकी बेवफाई का परिणाम पूरे राष्ट्र का विनाश था। मसीह जानता था कि यरूशलेम के विनाश के समय यहूदी उसकी चेतावनी को याद रखेंगे, और ऐसा ही हुआ। जब यरूशलेम पर विपत्ति आई, जब लोगों पर हर तरह की भुखमरी और पीड़ा आई, तो उन्होंने मसीह के इन शब्दों को याद किया और दृष्टांत को समझा। उन्होंने अपने ईश्वर प्रदत्त प्रकाश को दुनिया में चमकने देने की उपेक्षा करके खुद पर ही अपना दुख लाया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्य अमीर आदमी के इतिहास के समापन में चित्रित किए गए हैं। अमीर आदमी ने अब्राहम का बेटा होने का दावा किया, लेकिन वह अब्राहम से एक अवैध खाई द्वारा अलग हो गया था। एक ऐसा चरित्र जिसे गलत तरीके से विकसित किया गया था। अब्राहम ने विश्वास और आज्ञाकारिता में उनके वचन का पालन करते हुए परमेश्वर की सेवा की थी, लेकिन अमीर आदमी परमेश्वर और पीड़ित मानवता की जरूरतों के प्रति बेपरवाह था। उसके और अब्राहम के बीच तय की गई बड़ी खाई थी अवज्ञा या आज्ञा नहीं मानना। आज बहुत से लोग इसी मार्ग पर चल रहे हैं। चर्च के सदस्य होते हुए भी वे अपरिवर्तित हैं। वे चर्च की सेवा भाग ले सकते हैं, वे भजन गा सकते हैं जैसे हिरण जल की धाराओं के पीछे हाँफता है। वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे पीछे हाँफता है, भजन संहिता 42 का 1। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, चर्च के सदस्य होने पर भी वे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वे झूठ की गवाही देते हैं। वे परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़े पापी से अधिक धर्मी नहीं हैं। जो आत्मा संसारिक सुख के उत्साह के पीछे भागता है, जो मन दिखावे के प्रेम से भरा है, वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। दृष्टांत में धनी व्यक्ति की तरह ऐसे व्यक्ति में शरीर की वासना के विरुद्ध युद्ध करने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। वह भूख को तृप्त करने के लिए ललायित रहता है। वह पाप का वातावरण चुनता है। वह अचानक मृत्यु द्वारा छीन लिया जाता है और वह शैतानी एजेंसियों के साथ सहभागिता में अपने जीवन काल के दौरान बनाए गए चरित्र के साथ कब्र में चला जाता है। कब्र में उसके पास कुछ भी चुनने की शक्ति नहीं होती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि जिस दिन मनुष्य मरता है उसके विचार नष्ट हो जाते हैं, यह कहता है परमेश्वर का वचन। यह हम पढ़ते हैं भजन संहिता 146 का 4 में और सबब देशक 9 का पदस्थल 5 और 6 में। जब परमेश्वर की आवाज मरे हुओं को जगाती है तो वह कब्र से उन्हीं इच्छाओं और जुनूनों, उन्हीं पसंदों और नापसंदों के साथ बाहर आएगा जो उसने जीते समय संजोए थे। परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से बनाने के लिए कोई चमत्कार नहीं करता जो हर अवसर और हर सुविधा प्रदान किए जाने पर फिर से नहीं बनाया जा सकता था। अपने जीवन काल के दौरान उसने परमेश्वर में कोई आनंद नहीं लिया, ना ही उसकी सेवा में आनंद पाया। उसका चरित्र परमेश्वर के साथ सामंजस्य में नहीं है और वह स्वर्गीय परिवार में खुश नहीं रह सकता। भाइयों और बहनों, आज हमारी दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो खुद को धार्मिक मानता है। वे पेटू नहीं है, वे शराबी नहीं है, वे काफिर नहीं है, लेकिन वे ईश्वर के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना चाहते हैं। ईश्वर उनके विचारों में नहीं है, इसलिए उन्हें अविश्वासियों की श्रेणी में रखा गया है। यदि उनके लिए परमेश्वर के शहर के द्वार में प्रवेश करना संभव होता तो उन्हें जीवन के वृक्ष पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि जब ईश्वर की आज्ञाएं उनके सामने रखी गईं तो उनके सभी बाध्यकारी दावों के साथ उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने यहाँ परमेश्वर की सेवा नहीं की है, इसलिए वे भविष्य में भी उसकी सेवा नहीं करेंगे। वे उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते और उन्हें लगेगा कि स्वर्ग से बेहतर कोई और स्थान है। मसीह के बारे में जानने का मतलब है उनकी कृपा प्राप्त करना जो उनका चरित्र है। लेकिन जो लोग धरती पर दिए गए अनमोल अवसरों और पवित्र प्रभावों की सराहना नहीं करते और उनका उपयोग नहीं करते, वे स्वर्ग की शुद्ध भक्ति में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। उनके चरित्र ईश्वरीय समानता के अनुसार नहीं ढले हैं। अपनी स्वयं की उपेक्षा से उन्होंने एक ऐसी खाई बना ली है जिसे कोई भी पाट नहीं सकता। उनके और धर्मी लोगों के बीच एक बड़ी खाई है। प्यारो, इस दुनिया में ही हमें एक मौका मिला है, हम अच्छा चुनाव करें, लोगों की सेवा करें कि हम धर्मी लोगों के संग हो सकते हैं और परमेश्वर के राज में हो सकते हैं। दुनिया में एक बार लोगों को मौका मिलता है, इस जीवन के बाद मनुष्य को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। प्यारो, आइए हम इसी जीवन में परमेश्वर और उसके राह को चुने और जो वरदान हमें दिए गए हैं उसे दूसरों की सेवा में उपयोग करें, स्वर्ग में धन जमा करें। हम ना कहें कि हम धर्मी लोगों के वंश से आ रहे हैं, परमेश्वर हमारे चरित्र को देखेगा जो कि यीशु मसीह के चरित्र के लायक हैं, तभी हम परमेश्वर के राह में हो सकते हैं, परमेश्वर के राज में हो सकते हैं। प्यारो, परमेश्वर इस वचन सुनने के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम सबों को तू स्वीकार कर, हम अपने मनों को हृदयों को खोलते हैं, तेरा आत्मा को आने दे, हमें तेरा सच्चाई दिखा कि हम तेरा सच्चाई को चुने, इस धरती में तेरे बातों को हम सुने और सच्चाई का मार्ग में चले, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे और हम सबों को तेरा राज को ध्यान दे, परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।